दिन भर 17 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। समाजवादी पार्टी में आपसी विवाद निपटाने की कोशिशें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को भी अमली जामा पहनाने के प्रयास।
इस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए एक दूसरे के करीब आने की आवश्यकता है, शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ अलायंस के पीछे यही नजरिया होगा।
देखेंगे मुस्लिम वोटर पर धार्मिक गुरुओं की बातों का कितना होता है असर।
पूरे हिंदुस्तान में दो चार कंस्टिट्यूएंसी छोड़ दीजिए तो मुसलमान उसी तरह से वोट करता है जिस तरह से दूसरी समुदाय या जातियां करती हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में अध्यक्षता के पद और चिन्ह के निपटारे के बाद अब आपसी विवाद को दूर करने के लिए आज दिन भर पार्टी नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के साथ और अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। वहीं इस बीच सपा के कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज रहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि दुनिया में पेश आ रही परेशानियों के लिए वैश्वीकरण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आय में बढ़ते अंतर और वैश्विक शासन की कमियों का हल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से निकालना होगा। शी ने अपने भाषण में अपने विजन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चीन दुनिया में ऐसी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करना चाहता है जो खुली हो। इसे एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने अमेरिका का चीनी माल के निर्यात से बचाव करने की बात कही थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अन्य देशों से मौजूदा व्यापारिक नियमों से छेड़छाड़ न करने की अपील की।
China will keep its door wide open and not close it.
चीन अपने दरवाजे बंद नहीं बल्कि पूरी तरह से खुले रखेगा। खुले दरवाजे से अन्य देश चीनी बाजार का इस्तेमाल कर सकेंगे और चीन दुनिया से भी जुड़ेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भी अपने दरवाजे चीनी निवेशकों के लिए खुले रखेंगे। ये थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने देश के यूरोपीय संघ या ईयू से बाहर होने के बाद एक बाजार की सदस्यता रखने से इनकार किया है। लंदन में बोलते हुए टेरेसा मे का कहना था कि एक बाजार में रहने का मतलब ये होगा कि ईयू के नियमों में बिना अपना विचार रखे उसे स्वीकार करना। उनका कहना था कि पूर्ण सदस्यता से ब्रिटेन व्यापारिक समझौतों में अपनी बात नहीं रख पाएगा, लेकिन उनका ये भी कहना था कि वे ईयू के साथ ऐसा व्यापार चाहेंगी जिसमें कोई कर ना लगे जो कि या तो नए सीमा कर समझौते के तहत ईयू के साथ हो या सीमा कर संघ के सदस्य देशों के साथ। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वो सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जौर में हवाई मदद से दी जाने वाली सहायता सामग्री की सेवा को लड़ाई की वजह से स्थगित कर रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी सेना और इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बीच हुई भारी लड़ाई में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब पिछले एक साल से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम सरकारी नियंत्रण वाले दीर अल जौर में सहायता सामग्री पहुंचा रहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लवरोव ने अमेरिका के नए प्रशासन से सीरिया पर शांति वार्ता में भाग लेने की उम्मीद जताई है। ये शांति वार्ता कजाकिस्तान में अगले हफ्ते होगी। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस शांति वार्ता का मुख्य मकसद संघर्ष विराम पर आम राय बनाना है, लेकिन उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि कुछ यूरोपीय देश इस पहल में बाधा बनेंगे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वे इसका हिस्सा नहीं हैं। मॉस्को में बोलते हुए सरगेई लवरोव ने कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सहयोग बढ़ाने का अच्छा मौका है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका का नया प्रशासन हमारा आमंत्रण स्वीकार करेगा और उसके विशेषज्ञ इस बैठक का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बैठक के दौरान हम सीरिया में आतंकवाद से लड़ने के लिए अपना सामर्थ्य बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। ये थे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लवरोव के शब्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा पर तैनात फौज के जवानों की शिकायत पर केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में पूछा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का राजनीतिक विवाद चुनाव आयोग ने निपटा दिया है और अब आपसी विवाद भी निपटाने की कोशिशें हो रही हैं। आज दिनभर पार्टी नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के साथ इस पर बातचीत की और अखिलेश यादव ने भी मुलायम सिंह से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी दिन भर चर्चाएं गर्म रहीं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के बाद ही अंतर्विरोध सामने आने लगे हैं। आज के पूरे घटनाक्रम पर सुनिए समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और निशान जीतने के बाद अब समाजवादी पार्टी वैध तरीके से अखिलेश यादव के पास आ गई है, लेकिन वास्तव में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग पहले से ही अखिलेश को नेता माने हुए था। पार्टी कार्यकर्ता आज भी अखिलेश यादव के घर और पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाते रहे। वहीं पार्टी का सिंबल पाने के बाद अखिलेश यादव आज दिन भर टिकट और गठबंधन को लेकर माथापच्ची करते रहे। उधर मुलायम शिवपाल खेमे की ओर से भी अब अखिलेश को ही नेता मान लेने की कवायद शुरू हो गई है। चर्चाएं ये भी रहीं कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को शिवपाल समर्थकों की एक लिस्ट सौंपी है और उन्हें टिकट देने का आग्रह किया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सुलह की कोशिशें जारी हैं इसमें संदेह नहीं। शिवपाल यादव के करीबी कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
देखिए किसी तरह की कोई आशंका समाजवादी पार्टी में नहीं है, सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ये बात कह दी कि पूरी पार्टी एक होके चुनाव लड़ेगी। किसी तरह का जो भी आपस में जो भी बातें हैं सब चुनाव के दरमियान सब खत्म, क्योंकि हमें 2017 में सरकार बने, किसी तरह का कोई मतभेद अब नहीं है। पार्टी के नेता ने यह आदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। 2017 में जब बहुमत हमको मिलेगा, मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं करेंगे और सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे।
कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन वैसे तो तय माना जा रहा है और आज दिल्ली में कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने ये बात लगभग स्पष्ट भी कर दी। बावजूद इसके कांग्रेस के नेता अभी साफ तरीके से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कल नोटबंदी के खिलाफ लखनऊ और कानपुर में रिजर्व बैंक के दफ्तरों पर धरना देने वाली है, लेकिन गठबंधन के सवाल पर पार्टी नेता प्रमोद तिवारी कहते हैं,
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था चौपट की है, उसके खिलाफ सबको एक साझा शक्ति बन के उभरना है। और जो ये डिक्टेटरशिप है, इस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए एक दूसरे के करीब आने की आवश्यकता है, शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ अलायंस के पीछे यही नजरिया होगा।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद 149 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को जारी कर दी, लेकिन जिस डर से वो सूची जारी करने में देरी कर रही थी वो डर हकीकत बनकर सामने आ गया। कई जगहों से पार्टी नेताओं के बगावती तेवरों और इस्तीफों की खबरें आने लगी हैं। बताया जा रहा है किसी के चलते पार्टी ने आज दूसरी लिस्ट नहीं जारी की, लेकिन पार्टी नेता किसी तरह के असंतोष को सिरे से नकार रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक,
एक दो जगहों से लोगों कुछ लोगों की चर्चा थी, स्वाभाविक है, कई जगहों पर बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता थे, लेकिन लोकतंत्र की मजबूरी है कि सारे योग्य कार्यकर्ताओं में से एक सीट पर एक ही उम्मीदवार तय करना था। ऐसे में कुछ लोगों को लगा है कि उनका उनकी जगह उनका चयन होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उससे बातचीत करके समाधान करने का प्रयास कर लिया जाएगा, लेकिन कोई असंतोष की बात है ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है।
बहरहाल लोगों की निगाहें अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर टिकी हैं, क्योंकि इससे राज्य भर में कई तरह के समीकरण बनने और बिगड़ने की संभावना देखी जा रही है। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
रोहित वेमुला की पहली बरसी के दिन देश के कई भागों में प्रदर्शन हुए हैं। दलितों के कई संगठनों की बैठक हुई और हैदराबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय में उस स्थान पर प्रदर्शन हुए जहां रोहित वेमुला ने एक साल पहले भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या की थी। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये नारेबाजी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने के हैं, जहां छात्र बहुत बड़े तादाद में प्रदर्शन कर रहे थे। आज वही दिन है जब रोहित वेमुला जाति के नाम पर भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करने पर आत्महत्या कर ली थी। प्रशासन दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्रों को अंदर नहीं छोड़ने के वजह से बहुत देर तक नारेबाजी की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र सुनदी मुन्ना ने कहा,
बेसिकली यहाँ पे बहुत लोग आया है, और 12 लोग को अरेस्ट कर रहा है और अंदर से करीबन 1000 तक स्टूडेंट्स पूरे गेट के पास जमा हुआ है।
मुन्ना और दूसरे छात्र वहां रोहित की मां राधिका वेमुला का इंतजार कर रहे थे ताकि वो छात्र को संबोधित करें। जब राधिका वेमुला वहां पहुंची तो उनको गेट के पास पुलिस रोक दी। पुलिस का कहना था कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ छात्र जा सकते हैं। बहरहाल रोहित वेमुला की मौत के बाद सारे देश में दलित छात्र में खासकर अप्रसन्नता फैली हुई है। प्रोफेसर कांचा इलाया ने बीबीसी को बताया,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इश्यू को काफी नेगेटिवली देख रहे हैं क्योंकि ये रोहित वेमुला का इश्यू जो है एक नेशनल इश्यू बना है और प्राइम मिनिस्टर ने उसी आदमी को एक अवार्ड भी दिया है और ये बच्चों का जो हालत है वो बहुत बुरा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भी नहीं कर रहे, आप थोड़ा ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना है और अगर प्रोटेस्ट है तो विद इन दी प्रॉपर नॉर्म्स होगा तो उसको भी अलाउ नहीं कर रहे।
प्रोफेसर कांचा इलाया का मानना है कि रोहित वेमुला के आत्महत्या का असर इतना फैला है कि दलितों का विषय उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ सकता है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
क्या रोहित वेमुला की आत्महत्या के एक साल बाद भी उसे न्याय मिल सकता है? इस मुद्दे पर इकबाल अहमद ने बात की दलित नेता उदित राज और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया से।
देखिए, बहुत छोटा सवाल है। सवाल सही तब होगा कि रोहित वेमुला रोज मारे जाते हैं, हजारों वर्ष से मारे जा रहे हैं, आज भी मारे जा रहे हैं, कल भी मारे जा रहे हैं, वो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। कुछ घटनाएं सुर्खियां में नहीं आ पाती हैं, कुछ आ जाती हैं। प्रश्न माकूल यह है कि ये कब तक, और दूसरा प्रश्न से ये बनता है कि ये व्यवस्था है।
रोहित वेमुला की घटना बिल्कुल अलग है और घटनाओं से। रोहित वेमुला क्या है? रोहित वेमुला एक आम दलित नहीं है, एक केवल वो कैरियर को लेकर आगे नहीं आ रहा है बल्कि उस एक पॉलिटिकल माइंडसेट है उसका, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में वो जीता है। अब उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? वो अंबेडकरवादी है, वो अंबेडकरवादी है और इसके साथ साथ वो एक समाजवादी यानी इक्वलिटी की जो इकोनॉमिकल जो इक्वलिटी होती है उसकी भी वो विचारधारा का समर्थक है और न केवल उसका समर्थक है बल्कि वो सेकुलरिस्ट भी है, सेकुलरिज्म की बात करता है। तो रोहित वेमुला को जो हम कहते हैं संस्थागत हत्या, वो ठीक है, उसके लिए ये ठीक ठीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये ठीक ठीक कहा गया है कि जो बीजेपी है वो बीजेपी इसके लिए दोषी है क्योंकि कभी ऐसी घटना नहीं। और जो घटना है कि मंत्रियों के इंटरफेरेंस के बाद, उसके दबाव के बाद हॉस्टल से निकाला गया, इसीलिए ये बात माननी चाहिए, हमको स्वीकार करनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल ये मर्डर था। ये पूरा का पूरा जो हिंदुत्व की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो हमला कर रही है, इस बात को हमको समझना होगा। और एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो संगठन है वो एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करते हुए दिखाई दे रही है, तो इसमें तो सरकार की ड्यूटी बनती है भाई कि अगर संवैधानिक व्यवस्था आपको बनाए रखनी है तो ये जो प्राइवेट आर्मी के रूप में, गौरक्षा दल के रूप में, तो आपको ये विद्यार्थी सेना के रूप में ये लोग जो काम कर रही है, आप लोगों को पेड़ से लटका के मार दे रहे हैं, आप ये सोचिए ना
जी।
आप जब कल्पना कीजिए कि गौकुशी के नाम पर मुसलमानों की हत्या नहीं हो रही, दलितों पर भी हमला है, दलितों के पूरे रोजी रोटी पर हमला है।
जितना आदमी पढ़ा लिखा उसका माइंड पोल्यूटेड है लेकिन उसका तरीका क्या होता बदल जाता, फिजिकल कहीं पर फिजिकल अटैक होता है, फिजिकल अनटचेबिलिटी होता है, यहाँ मेंटल अटैक होता है, मेंटल डिस्क्रिमिनेशन होता है।
इस सवाल को अगर बोल बोल करना हो तब ये बात कहे कि सारे लोग राजनीति चमका रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक फैशन हो गया है आजकल, क्या हो गया फैशन कि जैसे ही हम बीजेपी के काल राज शासन काल की बात उठाते हैं कि आपके राज्य में इतने दलितों पर अत्याचार हुए, आपके राज्य में इतने सांप्रदायिक दंगे हुए, तो आप तत्काल जो है कांग्रेस की सरकार का फिगर ला देते हैं। ये कौन सी बात हुई? यानी कि आप कांग्रेस और बीजेपी ये खेल खेले कि उसके राज्य में ये हुआ, इसके राज्य में ये हुआ और हम लोग जो है वो उत्पीड़न के शिकार होते रहे, आप सांप्रदायिक हमले के शिकार होते रहे। ऐसे बात थोड़ी होगी, ऐसी बात नहीं बनी। मौत हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये आपको आज गारंटी करनी है।
दिल्ली में जब निर्भया बलात्कार कांड हुआ तो उसके बाद जो रेप लॉस था उसको अमेंड किया गया। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है कि एक रोहित एक्ट पास कराए। क्या आप आज इस बात का आश्वासन देंगे कि आपकी सरकार जल्द से जल्द एक रोहित एक्ट पास करेगी?
देखिए ऐसा है कि कानून इस देश में कानूनों की कमी नहीं है, लागू करने की कमी होती है। सवाल इस बात का है कि इस देश की न्याय व्यवस्था का, गुजरात हाई कोर्ट में बैठे हुए जज कहते हैं कि इस देश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो रिजर्वेशन से हो रहा है, भ्रष्टाचार से हो रहा है, तो जब जज ये कह रहे हैं तो न्याय क्या मिलेगा हम लोगों को।
उदित राज और अनिल चमड़िया से बात कर रहे थे इकबाल अहमद।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। मुंबई हाईकोर्ट के एक जमानत के फैसले पर विवाद पैदा हो गया है। कोर्ट ने एक आदमी की हत्या के दो दोषियों को जमानत देते हुए कहा है कि मरने वाले शख्स की गलती सिर्फ ये थी कि वो दूसरे धर्म का था। भड़काऊ भाषण दिए जाने के बाद हिंदू राष्ट्र सेना के लोगों द्वारा एक मुसलमान युवक की हत्या के मामले में दिए गए इस फैसले की कई वरिष्ठ वकीलों ने निंदा की है। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
पेशे से इंजीनियर शेख मोहसिन की हत्या का ये मामला जून 2014 का है, जब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर छत्रपति शिवाजी सहित कई हस्तियों की आपत्तिजनक तस्वीरों की खबरें आने के बाद महाराष्ट्र के पुणे शहर में हिंदू राष्ट्र सेना ने एक बैठक की। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बैठक में भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसके बाद कई लोग हथियारों से लैस होकर शहर में घूमने लगे। शेख मोहसिन और उनके दोस्त को दाढ़ी और कुर्ते में देखकर उन पर हमला किया गया, जिसमें मोहसिन की मौत हो गई। हत्या के आरोपियों में से दो को जमानत देते हुए मुंबई हाईकोर्ट की जज मृदुला भटकर ने कहा,
दोनों आरोपियों की मोहसिन से ना ज्याती दुश्मनी थी, ना ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसा लगता है कि उन्हें धर्म के नाम पर उकसाया गया था। ऐसे में लगता है कि मरने वाले शख्स की गलती सिर्फ ये थी कि वो दूसरे धर्म का था, और ये आरोपियों के हक में जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन के मुताबिक जज का ऐसी राय जाहिर करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है और निंदनीय है।
टू से दैट द रिलीजन ऑफ ए पार्टी ऑफ ए विक्टिम,
ये कहना कि किसी व्यक्ति का धर्म उस पर हमला करने वाले आदमी के अपराध को सही ठहराने की दलील हो सकती है, एकदम गलत होगा। क्योंकि ये तो ऐसा कहना होगा कि हिटलर का यहूदियों को मारना ठीक था, क्योंकि उसे उनका धर्म नापसंद था।
राज्यसभा सांसद और आपराधिक वकील माजिद मेमन के मुताबिक ऐसा तर्क पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। उनके मुताबिक धर्म को आधार बनाकर जमानत देना अजीब है, और अगर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो ये पलट सकता है। मानवाधिकार वकील रिबेका जॉन भी इससे इत्तफाक रखती हैं।
जमानत तो मामले के सभी पहलुओं को देखकर दी जाती है, उसे देना या ना देना जज के हाथ में है, लेकिन धर्म और भड़काने पर इस तरह की राय देना बहुत परेशान करने वाला है।
इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल 17 लोगों में से 11 को पिछले 1.5 साल में जमानत मिल चुकी है। हालांकि उस दिन भड़काऊ भाषण देने वाले मुख्य आरोपी की जमानत साल 2015 में पहले ही खारिज की जा चुकी है। दिव्या आर्य, बीबीसी, दिल्ली।
उत्तराखंड सरकार ने पिछले एक महीने में हत्या जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे 19 अपराधियों को पैरोल पर रिहा कर दिया है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, और उसने इस मुद्दे पर राज्य के गृह सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा है। देहरादून से राजेश डोबरियाल की रिपोर्ट।
चुनावों में राजनीति के अपराधिकरण और बाहुबल के इस्तेमाल की बात तो अक्सर होती है, लेकिन उत्तराखंड में आजकल जिस वजह से ये हो रही है वो कुछ जुदा सा मामला लगता है। राज्य सरकार ने चुनाव की सरगर्मी के बीच पिछले एक महीने में हत्या के मामलों में सजा काट रहे 19 अपराधियों को पेरोल पर रिहा कर दिया। भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की तो राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने गृह सचिव से स्पष्टीकरण मांग लिया।
हमने स्टेट के होम सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है कि अगर कोई गलत लोगों को पैरोल दी गई है तो उसमें वो रिव्यू कर लेंगे। एक पैरोल तो ऑलरेडी कैंसिल कर दी गई है जो और किसी स्टेट में नहीं हुआ आज तक।
राधा रतूड़ी रुड़की निवासी लक्कड़पाला उर्फ पाल सिंह की बात कर रही हैं, जिन्हें पेरोल पर रिहा किए जाने की शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री और अब बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने दिल्ली में चुनाव आयोग को की थी। इसके बाद गृह विभाग ने लक्कड़पाला की पेरोल निरस्त कर दी और 11 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर हरिद्वार जेल भेज दिया गया। लक्कड़पाला विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में सजा काट रहे हैं और 23 दिसंबर को उन्हें 2 महीने का पेरोल दिया गया था। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार इतने सारे अपराधियों को छोड़कर भय का माहौल बनाना चाहती है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान कहते हैं,
ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो दर्जन लोगों के एक साथ रिलीज करने का ऑर्डर किया गया, और वो भी चुनाव के दौरान तो हमारा आपका लाइसेंस आर्म होता है, वो भी जमा करा देते हैं, तो लोगों को टेररिज करने के लिए कर रहे हैं।
लेकिन क्या ये अपराधी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में राज्य के पुलिस महानिदेशक M.A. गणपति ने कहा,
नहीं, पुलिस का पूरा इलेक्शन के दृष्टिकोण से जो भी होना है उसके लिए पूर्ण तैयारी है और इस संबंध में कोई टिप्पणी मुझे नहीं करनी।
उधर कांग्रेस इसे कैदियों के अधिकार से जोड़कर देखने की बात करती है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कहते हैं,
पैरोल जो है कैदी का अधिकार होता है, उससे एक प्रक्रिया के तहत कैदी उसको प्राप्त कर सकता है। हमने उस प्रक्रिया के तहत मेरिट के आधार पर निर्णय लिया है। मेरे हिसाब से मामले को जब दुष्प्रचार का सहारा लेने के लिए बड़ा चढ़ाकर बता दी।
इस मामले की खास बात यह भी है कि शनिवार को एक स्थानीय अखबार में छपी खबर के आधार पर भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को जो शिकायत की थी वो लिखित नहीं मौखिक थी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जिस विशेष मामले की शिकायत की थी उसमें पेरोल रद्द कर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कहीं इसका यह अर्थ तो नहीं कि भाजपा इस मामले को सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित रखना चाहती है।
उत्तराखंड में 19 अपराधियों को पेरोल पर रिहा किया गया। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। नए वर्ष की रात को इस्तांबुल के एक नाइट क्लब पर हमला करके 39 लोगों को मार डालने के आरोपी को तुर्की के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का दावा है कि अब्दुल कादिर माशारिपोव के साथ 4 और लोगों को इस्तांबुल के बाहरी इलाके में एक अपार्टमेंट में पकड़ा गया है। BBC संवाददाता मार्क लोवन की रिपोर्ट सुनिए राजेश जोशी से।
अधिकारियों का कहना है कि माशारिपोव ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। पुलिस को भरोसा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इस्लामिक स्टेट के गुप्त गुटों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इस्तांबुल के गवर्नर ने कहा है कि माशारिपोव के साथ पकड़े गए लोगों में एक इराकी और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वो 1 साल पहले गैर कानूनी तरीके से तुर्की में घुसने में कामयाब हो गए। तुर्की मीडिया ने इस गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया। टेलीविजन पर दिखाई गई तस्वीरों में एक आदमी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में दिखाया गया था, जिसके चेहरे पर गुम चोटों के निशान नजर आ रहे थे। इस्तांबुल के गवर्नर वासिफ साहिन ने कहा कि गिरफ्तार आदमी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
अब्दुल कादिर माशारिपोव खुद अबू मोहम्मद खुरासानी अब्दुल कादिर,
उसका नाम अब्दुल कादिर माशारिपोव है और छद्मनाम अबू मोहम्मद खुरासानी अब्दुल कावी है। उसका जन्म 1983 में उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वो पढ़ा लिखा आतंकवादी है और 4 भाषाएं बोलता है। आतंकवादी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसकी उंगलियों के निशान भी मिल गए हैं और स्पष्ट है कि ये हमला दाइश या इस्लामिक स्टेट ने करवाया था।
ये थे इस्तांबुल के गवर्नर वासिफ साहिन के शब्द। आपको याद होगा कि नववर्ष के दिन हुए इस हमले में मारे गए लोगों में इसराइल, फ्रांस, ट्यूनिशिया, लेबनन, भारत, जॉर्डन और सऊदी अरब आदि देशों के लोग शामिल थे। तुर्की पुलिस किसी भी संदिग्ध को आपातकालीन नियमों के तहत 30 दिन तक बिना आरोप के हिरासत में रख सकती है। पुलिस ने कहा है कि उसने पिस्तौलें, 2 ड्रोन और करीब $2,00,000 भी बरामद किए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने अधिकारियों को बधाई दी है।
इस्तांबुल के हमलावर को गिरफ्तार किया गया। भारतीय मुसलमानों की एक अहम संस्था दारुल उलूम देवबंद के मुख्य मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने चुनाव के दौरान संस्था के अंदर सियासी नेताओं से मुलाकात न करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि दारुल उलूम एक मजहबी और शैक्षिक संस्था है जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। देवबंद ने अब तक खुलकर चुनाव में किसी का पक्ष नहीं लिया है, मगर कई मुस्लिम उलेमा और धर्मगुरु अक्सर उन उम्मीदवारों और पार्टियों का समर्थन करते आए हैं जो उनके मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने को तैयार नजर आता है। लेकिन मुस्लिम वोटर पर मुस्लिम संस्थाओं और धार्मिक गुरुओं का कितना असर होता है, सुनिए जुबैर अहमद की एक रिपोर्ट।
मुस्लिम समुदाय में मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी के अपनी संस्था में 11 मार्च तक यानी 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने तक सियासी नेताओं से न मिलने के फैसले को आम तौर से सराहा जा रहा है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब कहते हैं कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं।
ये बयान जो देवबंद ने दिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत समझदारी का बयान है, और क्योंकि जो हमारे मसाइल हैं वो मजहबी नहीं है, बल्कि हमारे मसाइल जो है वो माशी हैं, हमारे मसाइल दूसरे हैं, اور اس میں ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جو سیاسی لوگ ہیں, جو سماجی کام کر رہے ہیں اور جو دنیاوی کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے اور اس میں علماء کرام کو دور رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بہتر قدم کیا انہوں نے.
محمد ادیب کہتے ہیں کہ چناؤ کے افسر پر نیتا مسلم دھرم گروؤں سے ملتے ہیں جن میں سے اکثر بے اثر قسم کے مولوی ہوتے ہیں.
سیاسی جماعتوں نے ابھی تک یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے مسلم علماء کے نام استعمال کرتے ہیں. بہت سے سیاسی مولوی کھڑے ہو گئے ہیں جو الیکشن میں اپنی قیمت لگواتے ہیں اور بہت کم قیمت پہ وہ مسلمانوں کے ووٹوں کو منتشر کرتے ہیں.
لیکن کیا دھرم گروؤں اور سنستھاؤں کی اپیل کا مسلم ووٹر پر اثر ہوتا ہے؟ ورشٹھ پترکار قربان علی کہتے ہیں کہ نہیں.
میں پچھلے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پترکاریتا کرتے ہوئے, اور کبھی بھی میں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ کسی مذہبی ادارے کا کی اپیل کا یا جسے فتوے کے نام سے بھی پرچارت کیا جاتا ہے کوئی اثر ہوتا ہے. پورے ہندوستان میں 2-4 کانسٹیٹیوئنسیز چھوڑ دیجئے تو مسلمان اسی طرح سے ووٹ کرتا ہے جس طرح سے دوسری سمودائے یا جاتیاں کرتی ہیں.
قربان علی کے انوسار مسلم سنستھاؤں اور دھرم گروؤں کو چناؤ کے دوران استعمال کرنے کا رواج کیول اتر بھارت میں ہے. کیرل میں مسلم آبادی 26% ہے, لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ جیسی سیاسی پارٹی بھی دھرم گروؤں کے پاس نہیں جاتی. لیکن اردو پترکار معصوم مراد آبادی کہتے ہیں کہ دارالعلوم کا یہ فیصلہ غیر ضروری تھا, اس سنستھا کا چناؤ سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ چناؤ کے دوران مسلم سمودائے پر مسلم سنستھاؤں اور مولویوں کا اثر ہوتا ہے.
اس کا اثر تو ہوتا ہے, یہ اگر آپ یہ کہیں کہ 100% اثر نہیں ہوتا تو 100% نہیں ہوتا, لیکن 50% کے آس پاس اثر ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی مطلب یہ ہوتا رہا ہے کہ جو مساجد کے ائمہ حضرات ہیں یا دینی اداروں کے سربراہ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے فیور میں اپیل بھی جاری کرتے رہے ہیں, اور مسلمانوں کا جو کی اکثریت ہے ان کی جو قابل لحاظ آبادی ہے وہ علماء کرام سے اور مذہبی قیادت سے زیادہ متاثر ہوتی ہے.
لیکن معصوم مراد آبادی بھی یہ سویکار کرتے ہیں کہ مسلم سمودائے ایک جٹ ہو کر کسی ایک راجنیتک پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا. اتر پردیش میں مسلم ووٹ سماج وادی پارٹی, بہوجن سماج پارٹی اور کانگریس پارٹی کے بیچ بڑھ جاتا ہے. زبیر احمد, بی بی سی, دلی.
اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں کھیل سماچاروں پر سمیرن پریت کور کے ساتھ.
کھیل کی دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیرن پریت کور, اور سب سے پہلے بات آسٹریلین اوپن کی. آسٹریلین اوپن کے پہلے راؤنڈ میں نوواک جوکووچ نے ہرایا فرنانڈو ورڈاسکو کو, رافیل ندال نے ہرایا جرمنی کے فلورین میئر کو, اور 6 بار آسٹریلین اوپن جیتنے والی سیرینا ولیمز نے ہرایا بیلنڈا بینچک کو. وہیں دوسری طرف کائل ایڈمنڈ نے ہرایا کولمبیا کے سینٹیاگو گرالڈو کو 6-2, 7-5, 6-3 سے. کائل ایڈمنڈ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشکل گرینڈ سلیم ہے.
ایک بہت ہی مشکل گرینڈ سلیم ہے, یہاں گرمی بھی ہے, اس میں آپ کو فٹ رہنے کی ضرورت ہے. آسٹریلین اوپن سال کی شروعات میں آتا ہے تو اس سے آنے والے سال کے لیے آپ اچھے سے تیار ہو جاتے ہیں. میرا فوکس صرف میرے کام پر ہے اور میں ہر گیم میں امپروو کرنا چاہتا ہوں, اور میرے پردرشن سے یہ دکھ رہا ہے کہ میرا کھیل امپروو ہو رہا ہے.
ورلڈ نمبر 2 نوواک جوکووچ کا اب مقابلہ ہوگا ڈینیس اسٹومن کے ساتھ. وہیں رافیل ندال کا اب مقابلہ ہوگا دوسرے راؤنڈ میں مارکوس بگڈاٹیس کے ساتھ. اینڈی مرے کا مقابلہ ہوگا روس کے اینڈرے روبلیو کے ساتھ. وہیں مقابلہ ہوگا روجر فیڈرر کا امریکہ کے نوہا روبن کے ساتھ. اسپورٹس کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی.
اور سبھا کے انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر.
بی بی سی سماچار. اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی میں ادھیشتا کے پد اور چنہ کے نپٹارے کے بعد اب آپسی وواد کو دور کرنے کے لیے آج دن بھر پارٹی نیتاؤں نے ملائم سنگھ یادو کے ساتھ اور اکھلیش یادو نے ملائم سنگھ سے ملاقات کی. چین کے راشٹرپتی شی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ دنیا میں پیش آ رہی پریشانیوں کے لیے ویشویکرن کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. ترکی میں نئے سال کے موقع پر استنبول میں ایک نائٹ کلب میں ہوئے حملے میں معاملے میں گرفتار کیے گئے سندگھ کے بارے میں جانکاریاں سامنے آ رہی ہے. شہر کے گورنر ویسپ ساہن کا کہنا ہے کہ 34 سال کے عبد القادر کو پچھلی رات پکڑا گیا ہے اور اس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. روس کے ودیش منتری سرگئی لاوروو نے امریکہ میں کے نئے پرشاسن سے سیریا پر شانتی وارتا میں بھاگ لینے کی امید جتائی ہے. بی بی سی سماچار.
دن بھر کو یہیں ویرام دیتے ہیں. اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے تلک راج بھاٹیا, ریحان فضل کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. نمسکار.